نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی ہماری اس تربیتی نشست کا عنوان ہے ذکر کی فضیلت اور یہ عنوان ہم نے دادا حضور قبلہ کے ملفوظات سے لیا ہے کیونکہ یہ مہینہ ان کے عرس مبارک کا مہینہ ہے اور آج یکم جماعت الاول ہے انشاءاللہ تعالی 16 جماعت الاول سے عرس مبارک شروع ہوگا 16, 17, 18 اور انگریزی 9, 10, 11 اور دن پیر منگل بدھ یاد رکھیے گا تو اسی مناسبت سے ان کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اسی پر گفتگو ہوگی آپ نے ہندوستان کے ایک شہر ضلع گیا وہاں پر مریدین کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک ذکر بالقلب اور ایک ذکر باللسان ذکر بالقلب آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے دل کا ذکر دل میں ذکر کرنا اور ذکر باللسان زبان کے ساتھ ذکر کرنا پھر فرمایا اسے ذکر بالجہر اور ذکر خفی بھی کہتے ہیں جہر کے معنی آواز کے ساتھ اور خفی مطلب اخفا پوشیدہ تو جو ذکر زبان کے ساتھ کیا جائے گا اسے ذکر بالجہر کہیں گے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تو اس کو کہیں گے ذکر بالجہر اور جو بغیر آواز کے صرف دل ہی دل میں کیا جائے گا اسے ذکر خفی کہا جائے گا تو بعض سلاسل میں ذکر خفی کی تعلیم دی جاتی ہے جیسے نقشبندیہ سلسلے میں اور بعض سلاسل میں ذکر بالجہر کی تعلیم دی جاتی ہے جیسے چشتیہ قادریہ سہروردیہ ان سب میں صرف نقشبندیہ میں ذکر خفی کی تعلیم دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آواز نہ ہو صرف قلب کا ذکر ہو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے اور یہ بھی درست ہے اور ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں دونوں ہیں ذکر خفی بھی ہے اور ذکر بالجہر بھی یعنی جہاں آپ ذکر بالجہر کر سکتے ہیں تو ذکر بالجہر کیجیے اور کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں ذکر بالجہر کرنا ناممکن ہے تو آپ ذکر خفی کر دیجیے اور ذکر خفی تو ہر جگہ ہو سکتا ہے آپ سفر میں ہیں حضر میں ہیں بس میں ہیں اپنی گاڑی میں ہیں اسکوٹر پہ کسی بھی سواری پر ہیں پیدل چل رہے ہیں یا کسی مقام پر بیٹھے ہیں تو آنکھ بند کر کے قلب کے ساتھ ذکر خفی کرتے رہے تو وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے پھر فرمایا کہ اگرچہ دونوں ذکر مقبول ہیں لیکن تاثیر دل کے ذکر کی ہے قلب اور جو طالب صادق زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہے وہ بہت جلد مقامات طے کر لیتا ہے پھر فرمایا ذاکر سے شیطان دور رہتا ہے ذاکر پر بوقت ذکر رحمتوں کا نزول ہوتا اب آپ نے سب نے ذکر کیا یقیناً اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی فرمایا ذاکر کو ذکر سے جو لذت اور حلاوت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی ابھی میں یہ پڑھ رہا ہوں بعد میں پھر اس کی ایک ایک کی تشریح کروں گا ذاکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کا ذکر مرنے کے بعد قبر میں بھی جاری رہتا ہے پھر مریدین اور متقدین کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ذکر کرو اور ہر وقت ذکر کی فکر کرو اس لیے کہ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں درجات کی بلندی ہے یہ آپ کا ارشاد گرامی اب اس پر گفتگو کرتے ہیں دیکھیے ہم دن رات ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی اپنے بچوں کا ذکر کرتا ہے کوئی اپنی بیوی کا ذکر کرتا ہے کوئی اپنے دوستوں کا ذکر کرتا ہے کوئی سفر سے آیا تو اس سفر کا ذکر کرتا ہے کوئی کاروبار میں ذکر کرتا ہے مختلف ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ جتنے بھی ذکر ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے اور ان ذکر کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ना हमें कोई फायदा ना दूसरे कोई फायदा। हाँ एक जिक्र है कि जिसके करने का हमें भी फायदा है और जिस वक्त हम करें कोई आकर बैठ जाए तो उसे भी फायदा, और वो जिक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मन वालो, अल्लाह का जिक्र। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी जिक्र से बुजुर्गान दीन ने मकामात तय किए, दरजात हासिल किए, बुलंदियां हासिल की इसी जिक्र से। तू हो तेरा जलवा और गोशे तन्हाई, बिल्कुल तन्हाई में बैठ गए और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है, एक है जिक्र बिल लिसान और एक है जिक्र बिल कल्ब, जिक्र बिल जहर और जिक्र खफी, ये दो जिक्र हो गए। जो हमने अभी किया ये है जिक्र बिल जहर। अब ये जिक्र आप हर जगह नहीं कर सकते। मसलन अगर आपसे कहा जाए कि फजर से पहले उठकर जिक्र करो, ठीक है ना, तो फजर से पहले उठकर जिक्र शुरू करेंगे सारे घर वाले उठ जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, खुद तो सोते नहीं हमें भी नहीं सोने देते, यही होगा ना। जिक्र बिल जहर जाहिर है वो तो आवाज के साथ। इसलिए अगर कोई ऐसी सूरत है कि अलहदा आपका कमरा है आप कर सकते हैं तो जिक्र बिल जहर कीजिए, उसकी फजीलत, और अगर ऐसी सूरत नहीं तो फिर जिक्र खफी कीजिए। दोनों जिक्र अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जलील कद्र सहाबी हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत करते थे बिल्कुल आहिस्ता धीमी आवाज, किसी को पता ही नहीं चला, खामोशी से तिलावत कर रहे, देखने वाला समझ रहा है कि हाँ तिलावत कर रहे। और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद आवाज से चीख कर, बाहर तक आवाज आ रही है इतनी बुलंद आवाज, लोग सोते सोते उठ जाए। अब लोगों ने शिकायत की नबी पाक अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी वाद, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये फारूक आजम इतनी तेज तिलावत करते हैं कि हम सोते सोते उठ जाते, फजर से पहले बुलंद आवाज से तिलावत कर रहे हैं, और सिद्दीक अकबर ये बिल्कुल आहिस्ता। हुजूर ने बुलाया दोनों, पहले पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, तुम क्यों आहिस्ता तिलावत करते, कि या रसूलल्लाह मैं जिसको सुनाना चाहता हूं वो तो दिल की बात भी सुनता तो मुझे जोर से बोलने की क्या जरूरत। अब देखिए अंदाज दोनों का देखिए, मैं जिसको सुनाना चाहता हूं वो तो दिलों की बात भी सुनता है तो मुझे आवाज निकालने की जरूरत क्या। फरमाया ठीक है बैठ जाओ। बुलाया फारूक आजम रदी अल्लाह तआला, तुम क्यों बुलंद आवाज से तिलावत करते हो कि ये लोग सोते सोते उठ जाएं। कहा मैं बुलंद आवाज से तिलावत करके शैतान को भगाता हूं और लोगों को फजर के लिए उठाता हूं। अब मौकिफ दोनों का सही था, उन्होंने भी सही कहा, इन्होंने भी सही कहा। अब कुर्बान जाइए नबी पाक अलैहिस्सलाम के, सरकार ने इतना बेहतरीन फैसला फरमाया, फरमाया अबू बकर तुम अपनी आवाज थोड़ी सी बुलंद कर लो और उमर तुम अपनी आवाज थोड़ी सी पस्त कर लो। दोनों को मना नहीं किया, दोनों कर सकते हैं, बस तुम थोड़ी सी बुलंद कर लो, तुम आवाज थोड़ी सी पस्त कर लो। अब दोनों चीजें सही है ना अपनी जगह, दोनों की नियत, दोनों का अकीदा और जिस मकसद के लिए वो कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त था। भाई अल्लाह को सुनाना है तो दिल में भी कह दो तब भी सुनेगा, लेकिन शैतान को भगाना है तो आवाज निकाल ली। शैतान को भगाने के लिए जब ला इलाहा इल्लल्लाह की जरब लगेगी तभी तो निकल के भागेगा, वरना वो तो दिल में घुसा बैठा है। इसलिए वालिदे गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफी अल जिलानी नबरल्लाहु मनकदो फरमाते थे कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये शैतान के लिए कोड़ा है। जैसे किसी के कोड़ा पड़ता है ना तो वो भागता है, तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा दिल पर तो वो निकल के भाग जाए, ये शैतान के लिए कोड़ा है, ये अल्लाह का जिक्र जो है ये कोड़ा, तो उसको भगाना है तो बुलंद आवाज से करो। अब ऐसे नहीं कि सुबह फजर से पहले शुरू हो जाओ सारे मोहल्ले वाले उठ जाएंगे कि क्या होगा, घर वाले भी परेशान। हाँ मौका महल देख के अगर ऐसी सूरत है तो कर सकते हैं, वरना जिक्र खफी करें। जिक्र खफी दिल की सफाई के लिए सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह का जिक्र, سب سے بہترین چیز. لکل شئین سقالت و سقالت القلب ذکر اللہ, ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر. جب انسان مسلسل ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب آئینے کی طرح روشن ہو جاتا, منور ہو جاتا. اور ہوگا کیسے, اگر کسی چیز کو صاف کرنا ہو نا تو اسے رگڑنا پڑتا, ٹھیک ہے نا. اب جیسی میل ہوگی اسی طریقے کی صفائی ہوگی. ایک شیشے پر خاک پڑ جائے تو آپ نے کپڑا لے کے جھاڑا, ایک ہی مرتبہ کیا, خاک اڑ گئی, صاف ہو گئی نا. لیکن اگر شیشے پر تیل گر جائے اور تیل کے اوپر وہ ڈس وہ خاک جم جائے, اب کپڑے سے مارو گے تو صاف ہوگی نہیں, اس پر کوئی صابن لگانا پڑے گا, کوئی کیمیکل لگانا پڑے گا. اچھا آپ نے صابن بھی ڈال دیا, کیمیکل ڈال دیا, صاف ہوگی نہیں, اس کو رگڑنا بھی پڑے گا, اس کو رگڑنا پڑے گا. ہاتھ سے رگڑو تب جا کے صاف ہوگی. اس لیے اسی طرح اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں, بلا تشبیہ ہو تمثیل, قلب پر گناہوں کی آلودگی, گناہوں کی ڈس, گناہوں کی خاک, گناہوں کی گندگی اتنی جم چکی ہے کہ خالی صرف نماز سے صاف نہیں ہوگی, اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. اللہ کا ذکر کرو اور مرشد گرامی کا ہاتھ اسے رگڑے گا تب صاف ہو جائے گا, یا ان کی نگاہ کرم پڑے گی تب صاف ہو جائے گا. جیسی میل ہے ویسی صفائی. لکل شئین سقالت و سقالت القلب ذکر اللہ. اب ظاہری چیز اگر صاف کرنی ہے تو ظاہری آلے سے, اور باطنی چیز دل کی, تب وہ دل پہ صابن ملتے رہو صاف ہو جائے گی. کتنے شیمپو اور صابن مل کے نہاتے ہو, صرف جسم ہی صاف ہوتا ہے, دل تو صاف نہیں. قلب کو صاف کرنا اللہ کے ذکر سے, اس کے ذکر کے بغیر صفائی ممکن نہیں. تو اسی لیے ذکر کی فضیلت ہے. تو ایک ہوا ذکر باللسان اور ایک ہوا ذکر بالقلب, اور اس کو بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے ذکر بالجہر اور ذکر خفی. تو آپ نے سمجھ لیا ذکر بالجہر آواز کے ساتھ, اور ذکر خفی دل میں, دل ہی دل میں. آپ جہاں بیٹھے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں سو رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے, اور قلب میں اللہ 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 ذکر ہو رہا ہے. جیسے جیسے ذکر ہو رہا ہے ویسے ویسے دل روشن ہوتا جا رہا ہے, صاف ہوتا جا رہا ہے. اور جب قلب بالکل روشن ہو جائے تو پھر کیفیت ہوتی ہے, کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تب نظر آتا ہے. ہماری آنکھ کھلتی ہے تب نظر آتا ہے, اور ان کی آنکھ بند ہو تب نظر آتا ہے. کیونکہ جب ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے تو باطنی آنکھ کھل جاتی ہے. پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے بیٹھے یہاں اور دیکھے وہاں, پوری کائنات کا مشاہدہ کرتا. تو یہ صرف ذکر کی وجہ سے. پھر فرمایا اگر طالب صادق دونوں سے ذکر کرے, یعنی قلب اور لسان, دل اور زبان, تو پھر وہ بہت جلد مقامات طے کر لے گا, بہت جلد. اس لیے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, تمہاری زبان جس چیز کا اقرار کر رہی ہو دل اس کی تصدیق بھی کر رہا ہو. اگر زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ تو پھر کامیابی نہیں. دل اور زبان ایک ہے تب بندہ نیک ہے, ورنہ نہیں. ہماری کیفیت یہ دل میں کچھ ہے زبان میں کچھ ہے, دل سے ذکر کر رہے ہیں اور زبان میں کچھ اور, یا زبان سے ذکر کر رہے ہیں تو دل میں کچھ اور. دونوں سے ذکر ہو, اور سب سے بڑی اہمیت قلب کے ذکر کی ہے کہ زبان چلے یا نہ چلے قلب جاری, اور اسے کہتے ہیں سلطان الاذکار. وہ سب سے بڑا ذکر ہے جو قلب سے جاری ہے, یعنی بظاہر زبان بند ہے لیکن دل ذکر کر رہا مسلسل, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, یا حق ہو حق ہو, مسلسل ذکر میں مصروف, ایک لمحے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. تو اس کو کہتے ہیں ذکر خفی. پھر آگے چل کے فرمایا کہ ذاکر سے شیطان دور رہتا ہے, اور ذاکر پر بوقت ذکر رحمتوں کا نزول ہوتا. اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے فرشتے زمین پر سیاحی کرتے ہیں, گھومتے ہیں, کس لیے؟ अल्लाह के जिक्र करने वालों को ढूंढने के लिए। कहां जिक्र हो रहा है? अब वो जमीन पर घूम रहे, जहां देखा जिक्र हो रहा है वहीं नाजिल हो, और वो नाजिल होकर उन जिक्र करने वालों के साथ मिलकर फिर अल्लाह का जिक्र कर। अब आप देखते हैं ना, कभी कभी जिक्र में कैफियत पैदा हो जाती। अभी कैफियत पैदा हुई या नहीं हुई? सही तरह करोगे तो पैदा होगा। और कभी एक नशीत ऐसी रखेंगे जिसमें जिक्र ही जिक्र करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जब तक वो रोकेगा तो रुकेंगे, नहीं रोकेगा तो रुकेंगे ही नहीं, फिर देखो कैसा मजा आएगा। आओ इसीलिए कहा सिर्फ जिक्र ही करना है, कुछ नहीं करना। जब तार से तार मिल जाए ना, तब करंट पैदा हो जाता। तो जब भी तार से तार मिल गया, करंट पैदा हो जाए। अब फरिश्ते क्या करते हैं? बैठकर जिक्र करते हैं, और जब महफिल बर्खास्त होती है तो वापस अल्लाह की बारगाह में चलते। अब जब वो वहां चले गए तो हदीस शरीफ के अल्फाज, सरकार ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फरिश्तों से सवाल करता है, कैफ तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? मौला इस हाल में छोड़ा कि वो तुझे याद कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। अच्छा, मेरा जिक्र कर रहे थे? हाँ, उन्होंने मुझे देखा है? नहीं मौला, देखा नहीं, बगैर देखे जिक्र कर रहे। अगर देख लेते तब क्या करते? बगैर देखे जिक्र कर रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, उन सब जिक्र करने वालों को मैंने बख्श दिया, उन सब को बख्श दिया। फिर फरिश्ते करेंगे, मौला उनमें एक वो भी तो था जो जिक्र करने नहीं आया था, ऐसे गुजर रहा था, बैठ गया। उसकी नियत जिक्र करने की नहीं थी, ऐसे ही गुजर रहा था, उसने देखा जिक्र हो रहा है, वो भी बैठ गया। अल्लाह फरमाएगा मैंने उसको भी बख्श दिया, इसलिए कि नियत नहीं थी, बैठा तो उन्हीं में था। देखा सोबत का असर, बैठा तो उन्हीं में था, मेरा जिक्र करने वालों में, उनकी वजह से मैंने उसको भी बख्श दिया। ये है जिक्र की फजीलत। हम इसको मामूली चीज समझते हैं, कभी जमेरात को गायब हो गए, कभी नशीस में गायब हो गए, हाँ जिक्र तो होता रहता, कोई मसला नहीं है। इसकी अहमियत को समझो और देखो कि यहां आने से, इस जिक्र में शामिल होने से कितनी रहमतें नाजिल होती हैं और कितने मसले सिर्फ बैठने से हल हो जाएंगे, कितनी मुरादें पूरी हो जाएंगी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से। इसीलिए कि जब रहमत खुदाबंदी का नुजूल होता है तो वो गुनाहकार और नेकोकार बदकार किसी को नहीं देखता। जब रहमत नाजिल होती है तो सब पर यकसा नाजिल होती है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने से पूछा कि जब रहमत खुदाबंदी नाजिल होती है और मजमे में नेकोकार बदकार दोनों मौजूद हैं तो किस सूरत से नाजिल होगी? फरमाया दो बर्तन लाओ, एक पाक और एक नापाक। दोनों बर्तन लाके रख दिए। कहा अब बारिश होगी तो सिर्फ जो पाक बर्तन है साफ सुथरा वो भरेगा या दूसरा भी भरेगा? कहा दोनों भर जाएंगे। कहा यही मिसाल रहमत है खुदाबंदी। जब आसमान से रहमत की बारिश होती है, रहमत की घटाएं नाजिल होती हैं और बरसात होती है, तो वो रहमत ये नहीं देखती कि कौन नेक है और कौन बद है, वो सिर्फ ये देखती है इस महफिल में बैठा है सबको मुस्तफीद कर देती, सब फैजियाब हो जाता। ये बरकत है इज्तिमाई इबादत और इज्तिमाई जिक्र की, कि जहां जिक्र होता है वहीं रहमतों का नुजूल होता। और इस दरगाह को कायम हुए 50 साल से ज्यादा हो गए 50 साल से जिक्र हो रहा, कितनी रहमत नाजिल हुई होंगी, कितनी मर्तबा फरिश्ते नाजिल हुए होंगे। फरिश्तों को तो अब टाइम ही पता चल गया होगा कि हाँ इसी टाइम पे होता है। पहले सिर्फ जुमेरात को होते थे, अब इतवार को भी होते हैं, सही है। और दूसरी चीज, जिसने कोई नया काम शुरू किया जिस पर अमल करने से, यह हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, जिस पर अमल करने से दीन के लिए फायदा है, जितना सवाब उस पर अमल करने वालों को उतना ही जारी करने वाले, और जब तक वो सिलसिला जारी रहेगा जारी करने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो जारी किसने किया? हमारे पीर मुर्शिद ने। जब तक दरगाह कायम रहेगी, कयामत तक कायम रहेगी, जिक्र होता रहेगा, सवाब उनको मिलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं, जितना अमल करने वालों को उतना ही जारी करने वाले। ये शान है इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन। پھر آگے چل کے حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ذاکر کو ذکر سے جو لذت اور حلاوت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں, ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا, میرے محبوب کا ذکر ہو رہا, جس کو میں چاہتا ہوں, جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا ذکر ہو رہا. بلکہ جب محبت اور بڑھتی ہے تب پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے شہر کا ذکر ہو تب بھی محب خوش ہو جاتا ہے, یہ تو میرے محبوب کے شہر کا نام لیا جا رہا ہے. جب اس کے وطن کا ذکر ہو ملک کا تب بھی وہ خوش ہو جاتا, تب اس کے گلیوں کا ذکر ہو تب بھی وہ خوش ہو جاتا. محبت جب عروج پر پہنچتی ہے تو محبوب کا تعلق جن چیزوں سے ہے اور جن چیزوں کا تعلق ظاہری یا باطنی اس کے محبوب سے ہے, کسی کا بھی ذکر ہوگا وہ محب خوش ہو جائے. یہ تو دنیاوی محبت ہے, اور اس کو کہتے ہیں عشق مجازی, اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی, وہ اللہ رب العالمین کا عشق, وہ اللہ کی محبت. یہ تو مجازی ہے نا, دنیا میں ہم ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں, لیکن عشق حقیقی اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اس کی محبت. اور اس کے ذکر میں جب دنیاوی ذکر میں اتنی لذت ہے تو جو حقیقی محبت ہوگی اس کے ذکر میں کتنی لذت ہے, جو حقیقی محبوب ہوگا اس کے ذکر میں کتنی لذت ہوگی. یہی تو وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی کیفیت, رات کو 2 بجے ہیں, سردی ہے, پانی میں ہاتھ ڈالنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا, اور اللہ کا ولی وضو کر کے مسلے پر بیٹھ گئے. کیا چیز ہے جو انہیں سونے نہیں دیتی, کیا چیز ہے جس نے انہیں گرم بستروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا, کیا چیز ہے جس نے آرام سے اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرا کے مسلے پر بٹھا دیا. یہ وہی لذت ہے جو کسی اور چیز میں نہیں. اور جس وقت وہ شروع کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جاتا, پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی. اب اس کی مثال آپ ایک یہ سمجھیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں اگر بھول چوک ہو جائے تو نماز لوٹاتے ہیں نا, پتہ ہی نہیں کہ کتنی پڑھی, 2 پڑھی یا 4 پڑھی, اکثر ایسا ہو جاتا. پھر کہتے چلو یار دوبارہ لوٹا لو, اور دوبارہ لوٹانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, یار دوبارہ پھر 4 رکعت دوبارہ سے پڑھ, چلو پڑھ لیتے ہیں, پتہ نہیں کتنی پڑھی, کمی نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے بعض وقت پڑھتے بھی نہ ہوں, چلو دیکھا جائے, کوئی دیکھ تھوڑی رہا, اللہ معاف کر دے, ایسا بھی ہے. لیکن ان بزرگان دین کی شان کیا ہے, اب بزرگ قبلہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے 100 نفل روزانہ پڑھتے تھے, رات کو 1 بجے شروع کرتے تھے, 2 گھنٹے میں 100 نفل پورے ہو جاتے. تو فرمانے لگے کہ جب جیسے مسلح بچھائے تسبیح ایسے رکھی 100 دانوں کی تسبیح, 2 نفل پڑھے 2 دانے کھسکا دی. فرمانے لگے ایک دن میں جب کھسکانے لگا تو میرا ہاتھ لگا اور وہ مل گئے دانے سارے, آدھی تسبیح ہو گئی تھی, سارے دانے مل گئے. اب میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں 50 پڑھے یا 40 پڑھے, کتنے پڑھے, سوچنے لگا. پھر میں نے کہا چھوڑو دوبارہ سے شروع کرتا ہوں, پھر 1 سے شروع کرتا ہوں. کوئی اور ہوتا تو وہ تو زیادہ کر دیتا, نہیں 60 ہو گئے تھے 40 ہی پڑھنے پڑیں گے بعد, یہی کرتے نا ہم, تو یہی کرتے کہ چلو بھائی ہو گئے, کون دیکھ رہا ہے, ہاتھ لگ گیا تو مولا تو معاف کر دے. نہیں, اللہ کے ولی کی شان یہ ہے اس میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں. فرمایا کہ میں نے سوچا نہیں پتہ نہیں کتنے پڑھے ہیں, 40 ہوئے 60 ہوئے کتنے ہوئے, میں نے کہا پھر دوبارہ سے شروع کر دو, پھر 1 سے شروع کیا اور 100 پہ ختم کر دو. ہم کر سکتے ہیں, یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں, اس کی عبادت میں جو لذت اسے محسوس ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی. اور اسی طرح فرماتے تھے کہ لوگ ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, جو فلم ہم رات میں دیکھتے ہیں اگر یہ دیکھ لیں تو یہ سب چھوڑ دیں, اس لیے کہ یہ سب جھوٹ ہے, اور جو ہم رات کو دیکھتے ہیں وہ سچ ہے. یہ تو سارے جھوٹ ہے, جھوٹ ہے نا, اور حقیقت یہی سب جھوٹ ہے. اور دنیا اتنی جھوٹی ہے कि झूठ बोलते हैं, झूठ देखते हैं, झूठ सुनते हैं और झूठ पर अवार्ड भी देते हैं। अवार्ड देते ना, किसी की फिल्म कामयाब हो जाए, किसी का ड्रामा कामयाब हो जाए, उसे लिखने वालों को अवार्ड, बहुत अच्छा लिखा है आपने, बालफाज दीगर, झूठ बोलने में आपका जवाब नहीं, आप बहुत अच्छे झूठे, आप बहुत अच्छा लिखा आपने। भाई झूठी तो है ना, झूठी लिखा ना, सच तो नहीं लिखा, जो कुछ ड्रामे में है वो सच है, झूठ है। तो झूठ बोलते हैं, झूठ देखते हैं, झूठ सुनते हैं और झूठ पर अवार्ड भी देते हैं। और ये अल्लाह के वली ये सच बोलते हैं, रात में जो मंजर देखते हैं सच देखते हैं और सच की तलकीन करते हैं, ये उनकी शान है। फरमाते ये मेरा रिडार है, जो मुसल्ला है मेरा रिडार है, मैं इस पे सब कुछ देख लेता हूं। और ये हकीकत है कि जब वो देखते हैं तो फिर वो सब कुछ देखते हैं, जाहिर और बातिन को देखते हैं, जो जिस मकाम पर जो कुछ कर रहा है वो उसे देख रहे। तो अल्लाह के जिक्र में जो लज्जत पैदा होती है, जो जाकिर को हासिल होती है, वो किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए जब जिक्र का वक्त होता है तो वो हर चीज जो है पसे पुई डालकर सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता है। फिर उसका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, उधर से रहमतों का नुजूल हो रहा, उधर से रहमतों की बरसात हो रही और ये उसमें झूम रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, न जाने कितने मकाम तय कर रहा है, कितने दर्जे बुलंद हो रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, जिसके लिए वो हाथ उठा दे उसके भी दर्जे बुलंद। फिर उसकी कैफियत ये होती, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। खुद पूछे, ऐसा नहीं पूछेगा कि रात को सो रहे फजर की नमाज गायब और अल्लाह पूछ रहे बता तेरी रजा क्या है, नहीं। तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हारी मानेगा, तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हारी मानेगा। हम अल्लाह की कब मानते हैं, जो वो हमारी माने। ये अल्लाह की मानते रहे तो जिसके लिए हाथ उठा दिए अल्लाह ने भी मान लिया, दुआ कबूल कर दी। भाई यही नुक्ता है, तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हारी माने। फिर हजरत कुतुब रब्बानी ने फरमाया, जाकिर हमेशा जिंदा रहता है और उसका जिक्र मरने के बाद कब्र में भी जारी रहता है। मरने के बाद कब्र में भी जारी, क्यों? उसकी रूह जिंदा है। यह बड़ा अजीब नुक्ता है, इसको समझिए। अब देखें, हम किसी से कहते हैं कि ये बुजुर्गान दीन मदद करते हैं, ये हमारा अकीदा है ना, हम इनको पुकारें ये हमारी मदद करते हैं, ये हमारी इसलाह करते हैं, इनके मजार पे जाओ तो दुआ कबूल होती है। वो कहते कैसे मदद करते। एक आदमी मर गया, वो तो अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकता, आपने खुद नहलाया, आपने खुद कफनाया, खुद कंधा देकर कब्र में उतारा, फिर आप कह रहे मदद कर रहे, ये तो अजीब सी बात है, कैसे मदद करेंगे? आपने खुद ही कब्र में उतारा है ना और मनो मट्टी के नीचे दफन कर दिया और फिर आप कह रहे हैं कि ये मदद कर रहे हैं। सुनो, जरा सी समझ की बात है, वो जिस्म को देखते हैं, हम रूह को देखते हैं। मौत जिस्म को है, रूह को नहीं है, मौत रूह को नहीं। कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, कुल्लो रूहिन जायकतुल मौत नहीं कहा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, रूह को नहीं। वो जिस्म को देख रहे हैं, कह तुमने जिस्म को नहलाया, कफनाया, कब्र में उतार दिया, कैसे मदद करेंगे? और हमारी निगाह रूह पर है, रूह मरती नहीं, रूह जिंदा रहती और मरने के बाद उसकी रूहानी तसर्रुफात में और इजाफा हो जाता, तो वो जिस्म से थोड़ी मदद कर रहे हैं, वो रूहानी मदद कर रहे हैं, वो रूह से मदद कर रहे हैं और रूह को कभी मौत नहीं। और जब जिंदगी में जिक्र इलाही करके, जिक्र बिल जहर या जिक्र खफी करके उन्होंने अपनी रूह को इतना ताकतवर कर लिया, इतनी रूहानियत पैदा हो गई कि विसाल के बाद रूहानी तौर पर मदद कर रहे। मसला सिर्फ ये है, वो कहते नहीं तुमने इनसे मांगा, तुमने इनसे मदद तलब की, ये कैसे कर सकते हैं? और हम कहते करते हैं और यकीनन करते हैं, इसलिए कि वो रूहानी तौर पर करते हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर करते हैं। और उनके जिस्म से रूह का ताल्लुक रहता है, उनके जिस्म से रूह का ताल्लुक रहता है और वो जहां चाहे जा सकते हैं, तसर्रुफ कर सकते हैं, जो पुकारे उसी वक्त उसकी मदद कर सकते हैं। ये रूहानी कुव्वत है, रूहानी ताकत है। इसलिए जाकिर हमेशा जिंदा रहता है, इसलिए कि उसकी रूह जिंदा है। और जब रूह जिंदा है तो वो भी जिंदा है, और रूह को मौत नहीं, रूह को मौत है ही नहीं। फिर फरमाया उसके कब्र में भी जिक्र जारी रहता है, और मुरीदीन को मुखातिब करते हुए फरमाया हर वक्त जिक्र करो और जिक्र की फिक्र करो। यह बहुत बड़ी बात है, इंसान जिस चीज की फिक्र करता है उसमें कामयाब हो जाता है। अब किसी को रोजी की फिक्र है, किसी को बीवी की फिक्र है, किसी को बच्चों की फिक्र है, किसी को कारोबार की फिक्र है। एक फिक्र है ना, मुझे ये करना है, और जब फिक्र होगी तो जरूर कर लेंगे। मसलन ये कि आपने नमाज पढ़ी, अब आपको फिक्र है कि मुझे मगरिब पढ़नी है, जरूर पढ़ेंगे, और अगर फिक्र नहीं होगी तो चले जाएंगे। हाँ, देखा जाएगा जब वक्त आएगा पढ़ लेंगे। तो जिक्र की फिक्र करो, किसके जिक्र की? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मन, उसके जिक्र की फिक्र करो, और जब उसके जिक्र की फिक्र करोगे तो फिर वो अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे। फरमाया इसी में कामयाबी है और इसी में दरजात की बुलंदी है, इसी में दरजात की बुलंदी है। तो जो जिक्र की फिक्र करता है, मसलन ये कि अब जुमेरात को जिक्र हो रहा है, आपको फिक्र है कि मुझे 10 बजे दरगाह शरीफ पहुंचना है, अपने घर से ये इरादा लेकर चले, हर कदम पर नेकियां लिखी जा रही, फिक्र है, इबादत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए जा रहे हैं। जब पहुंच गए, जिक्र में शामिल हो गए, रहमतों का नुजूल हो गया, उससे मुस्तफीद हो गए। जब खाली बैठे अल्लाह का जिक्र करते रहे, जिक्र खफी करें। हम पहले नशिस्तों में बता चुके हैं कि सांस रोक कर एक सांस में 100 मरतबा इसमें अल्लाह कहें, एक सांस में 100 मरतबा अल्लाह 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 अल्लाह, आंख बंद करके बैठ जाएं और कल पर इसमें अल्लाह लिखा हुआ तसव्वुर करें, और सिर्फ दिल से जिक्र करें, जबान से नहीं, सिर्फ दिल से, जबान बंद हो कल्ब जारी। अब आप कहेंगे 100 मरतबा कैसे हो? तो एकदम नहीं, प्रैक्टिस करेंगे हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता 10 मरतबा करें, 20 मरतबा करें, 30 मरतबा करें, आहिस्ता 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 बढ़ाते रहेंगे, एक सांस में 100 मरतबा हो जाएगा। बात लोग करें हमारा तो सांस ही रुक जाएगा, मैंने कहा रुक जाए तो क्या हुआ, पहुंच जाओगे सीधे, कोई मसला थोड़ी, अल्लाह का जिक्र करते हुए चले जाओ। तो उसमें क्या होगा, जिक्र खफी की एक खसूसियत यह है कि आप हर जगह कर सकते हैं। मसलन ये कि आप घर से चले और ऑफिस आपको जाना है, और एक घंटे का रास्ता है, बस में आप बैठे हैं, आप आंख बंद करके बैठ जाइए और जिक्र करते हैं, लोग समझ रहे हैं ये सो रहा है, आप अल्लाह का जिक्र कर, पूरा रास्ता इबादत में शुमार हो गया, पूरा टाइम जो था इबादत में शुमार हो, किसी भी सवारी में हो, जिक्र खफी हर जगह किया जा सकता, हर वक्त किया जा सकता है, हर लम्हे किया जा सकता है। और जब इंसान जिक्र करता है और उसका कल्ब साफ हो जाता है तो शैतान खुद ब खुद दूर हो जाता है, कि जहां रहमान का जिक्र होगा शैतान वहां से दूर हो, और जहां जिक्र नहीं होगा वहीं शैतान मौजूद हो। तो इसलिए जो अहले तरीकत और अहले मोहब्बत हैं उनके लिए ये लाजिम है कि वो जिक्र करें। तो आप तमाम हजरात, अगर आपके घरों में ये गुंजाइश है कि आप अलहदा कमरे में बैठकर जिक्र बिलजहर कर सकते हैं, तो जो तरीका हमने बताया कि आंख बंद करके अपने कल्ब पे इसमें अल्लाह लिखा हुआ तसव्वुर करते हुए फजर से पहले उस वक्त बैठकर जिक्र करें, एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह और दो तस्बीह इल्लल्लाह, ये कर लें। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि अलहदा बैठकर आप करें, तो फिर आप उसी टाइम पर उठकर जिक्र खफी कर लें, इसी तरह एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह और दो तस्बीह इल्लल्लाह उसी डायरेक्शन के साथ, लेकिन जिक्र खफी, मतलब आवाज ना हो, दिल के साथ जिक्र। तो आप कुछ दिन जब आप करेंगे तो आपको इतनी लज्जत महसूस होगी कि दिल चाहेगा कि मैं यही करता रहूं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें एक चीज अपने पेश नजर रखें कि अपने तमाम मामलात जो हैं उसको मैनेज करें। मतलब बाद हजरात जब इस तरफ आते हैं तो वो सारी चीजें ही छोड़ देते, फिर घर वाले शिकायत लेकर आते हैं कि आपने तो जिक्र में लगा दिए तो कुछ करता ही नहीं। न ये काम पे जाता है, न ये पढ़ाई की तरफ, न ये किसी, तो इस तरीके से चले कि दीन भी हो और दुनिया भी, मगर दीन दुनिया पर मुकद्दम, दीन दुनिया पर मुकद्दम। तो जिक्र ऐसी चीज है कि ये इंसान को हर चीज से बेनियाज कर देती। जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक बताला कि खास रहमतें आप पर नाजिल होंगी और जितने भी बिगड़े हुए काम हैं खुद ब खुद बन जाएंगे। यानी जबान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, और जब जबान जिक्र में मशगूल रहेगी तो जितने भी जबान के गुनाह हैं उससे महफूज हो जाएगी। अगर झूठ बोलने का मौका भी आएगा तो दिल कहेगा कि ऐसा मत करो, खुद ब खुद रोक देगा, दिल रोक देगा। कोई गलत बात मुंह से निकालने का मौका आएगा तो दिल कहेगा नहीं ऐसा ना करो, रोका जाएगा कि तुम्हारी जबान पाक हो चुकी है, अब इसको गलत फहश गोई से, गलत बातों से नापाक मत करो, तुम तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, इसको पाक कर चुके हो। ऐसी चीज है ये अल्लाह का जिक्र कि ये जाहिर और बातिन को खुद ब खुद पाक कर देते। और जब इंसान का दिल पाक और साफ हो जाए तो जाहिर में खुद ब खुद उसका जलवा नजर आ जाता, जाहिर खुद ब खुद पाक हो जाता। एक मरतबा चीनियों में और रूमियों में मुकाबला हुआ। चीनियों ने कहा हम बड़े अच्छे नक्शो निगार बनाते हैं, रूमियों ने कहा नहीं हम बनाते हैं, हमारे पास बड़े खित्तात जो हैं बहुत अच्छे हैं, पेंटर हैं, बहुत अच्छी सीनरी बनाते हैं। दोनों में मुकाबला हो गया तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो दो दीवारें बनाओ और उन दोनों के बीच में पर्दा डाल दो। रूमियों से कहा तुम इस दीवार पे अपने फन का मुजाहरा करो, नक्शो निगार बनाओ, और चीनियों से कहा तुम इस दीवार पे अपने फन का मुजाहरा करो। अब बीच में पर्दा डाला हुआ, कोई एक दूसरे को ना देख सके, ठीक है। अब चीनी जो थे वो तो वाकई काबिल थे और रूमी जो थे वो बेचारे इतने काबिल नहीं थे। चीनियों ने क्या किया कि बेहतरीन किस्म के कलर लेकर आए और दीवार पे नक्शा बनाया और बहुत खूबसूरत दीवार बनाई। ऐसा नक्शा बनाया कि देखने से लगता है ये कोई बाग है, लगी नहीं रहा कि दीवार पे नक्शा बेहतरीन। और रूमियों ने क्या किया, दीवार को मलना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया, साफ करना शुरू कर, खूब रगड़ा खूब साफ किया, मिसले आईना बना दिया। जो टाइम दिया गया था ये नक्शो निगार बनाते रहे, वो रगड़ते रहे साफ करते रहे। अब जब बीच में से पर्दा हटा तो जो नक्शा इधर था वो इधर नजर आ गया, जो इधर था वो इधर नजर आ गया। मेहनत उनकी थी, काम इनके आगे, मेहनत इन्होंने भी की, उन्होंने बनाने में मेहनत की, इन्होंने सफाई में मेहनत की। अब तो वो हैरान रह गए ये क्या हुआ, हमने तो इतना जबरदस्त बनाया और ऐसा तो दूसरा कोई बना नहीं सकता, बिल्कुल भी यानी जैसा इस दीवार पे वैसा उस दीवार, ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा तुम तो नक्शो निगार बनाते रहे, हमारे पास ना ऐसे फनकार थे, ना ऐसे रंगो रोगन थे, ना ऐसे बेहतरीन नक्शो निगार बनाने वाले थे, हमने यही सोचा इसको रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के दीवार को आईना बना दो, जो कुछ इधर बनेगा वो खुद ब खुद इधर आ जाएगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने यह हिकायत बयान की, वो फरमाते सुनो इसी तरह अपने कल्ब को इल्लल्लाह की और अल्लाह की जरब से रगड़ रगड़ के साफ करो, गुनाहों की आलूदगी से पाक करो, मिसले आईना बना दो ताकि जो कुछ जमाले इलाही है वो सब कुछ इसमें नजर आ जाए, सब कुछ इसमें नजर आ जाएगा, सिर्फ रगड़ने की जरूरत है, पाक और साफ करने की जरूरत। और वो होगा किस तरह, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से। तो इसमें सिर्फ एहतियात यह है कि हम नमाजों की पाबंदी करें और कोई गलत बात अपनी जबान पर ना आने दें। फहज गोई मसलन गाली, किसी की दिल आजारी, झूठ, गीबत, चुगली, ये सारी चीजें, इससे अपनी जबान को पाक और साफ रखें, पाक साफ रखें और फिर अल्लाह का जिक्र करें तो देखें जबान में असर पैदा हो जाएगा, जबान में असर पैदा। जबान का असर इसीलिए खत्म होता है कि झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली खाते हैं, गालियां देते हैं और लोगों की दिल आजारी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसके बाद दुआ करते हैं तो फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही। कैसे दुआ कबूल हो? जबान में असर हो तब दुआ कबूल हो, और जब जबान में असर ही नहीं तो दुआ कैसे कबूल हो? तो इसलिए जिक्र की फजीलत इसीलिए है कि अपनी जबान को हम वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखें। और अगर कोई ऐसा मौका हो, जैसा कि हमने आपको बताया कि जिक्र खफी, तो जिक्र खफी शुरू करें, और जब 100 मरतबा करने पर कादिर हो जाएं, यानी आप बिल्कुल आराम के साथ इत्मीनान के साथ एक सांस में 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह कह सकें, तो फिर आपको दूसरा सबक दिया जाएगा। ठीक है ना? सारे सबक अभी नहीं बताऊंगा, पहले एक पूरा कर लो तो फिर दूसरा सबक मिलेगा। तो इसलिए जो जो चीज़ें बताई जाएं उसको बहुत गौर के साथ सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इन तमाम नशिस्तों का मकसद यही है कि हम अपने जाहिर और बातिन को पाक और साफ करें, और कोशिश करें कि जिस तरह इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने अपने आप को इन तमाम फुरुआत से, हर चीज से बचा कर रखा, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी अपने आप को बचा कर रखें, और ये कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, अपने मामूलात की पाबंदी करें, और जो जिक्र का सबक दिया गया है वो जिक्र करते रहें, फिर देखें इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। तीसरी चीज ये है कि ये माह मुबारक, जैसा कि इब्तिदा में हमने बताया कि दादा हुजूर क़िबला का उर्स मुबारक 16 जमादुल अव्वल से शुरू हो रहा, तो जिस तरह हम हर बुजुर्ग के उर्स से पहले आप हजरात को ये बताते हैं कि उनके इसाले सवाब के लिए आप लोग जो कुछ भी पढ़ना चाहें वो पढ़ें, तो आज जमादुल अव्वल की पहली तारीख यकुम, तो आज से शुरू कर दें या कल से शुरू कर दें, अपने मामूलात के अलावा अब उसमें सूरह यासीन पढ़ सकते हैं, सूरह रहमान पढ़ सकते हैं, और सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, कलमा तैयबा पढ़ सकते हैं, सिर्फ दुरूद शरीफ चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, और दुरूद ताज भी पढ़ सकते हैं। उसमें सिर्फ इतना करें कि जो कुछ आप पढ़ें उसको लिख लें। उर्स मुबारक के पहले दिन जब चादर पोशी होगी उस वक्त दुआ होती है, और उसके बाद रात में दुआ होती है, इन दो टाइम पे भी दे सकते हैं, और आखिरी दुआ तक भी आप दे सकते हैं। जो कुछ आपने पढ़ा उसमें अपना नाम लिख दें, और उसमें लिख दें कि ये चीज हमने पढ़ी है और इस तादाद में पढ़ी, अपने मामूलात के अलावा। तो अभी 15 दिन है, 15 दिन में आप लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, तो इस चीज को भी अपने जहन में रखें, और कोशिश करें कि साहिब उर्स के इसाले सवाब के लिए, क्योंकि उनका ये आप पर हक है, वो आपके दादा पीर हैं, तो इसलिए उनकी निगाह करम हासिल करने के लिए उनको जरूरत है इस चीज की, हमें जरूरत है। अब किसी की शादी होती है तो आप तोहफा देते हैं ना कोई तोहफा देते हैं, तो उर्स जो है ये बुजुर्गान दीन की शादी, अब इसमें क्या तोहफा देंगे? उन्हें कपड़े की जरूरत है? उन्हें किसी और चीज की जरूरत है? नहीं। इसाले सवाब का तोहफा पेश किया, जब इसाले सवाब का तोहफा जाएगा वो अपने हाथ उठा देंगे, इधर भी कामयाब हो जाओगे उधर भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए तो इसी नियत के साथ जो कुछ भी पढ़ना चाहे, इसमें किसी चीज की कैद नहीं है, जो कुछ भी पढ़ना चाहे वो पढ़े। तीसरी चीज ये है कि दुरूद ताज ये तमाम हजरात याद करने की कोशिश करें, ये बड़ा मकबूल दुरूद है और इसकी बड़ी फजीलत है। इंशाल्लाह इसको हम अलहदा से छपवा के और इसके फजाइल वगैरह भी उसमें लिखवा के शाये करेंगे अनकरीब। अभी भी ये कि जिन जिन लोगों के पास है, बल्कि आमतौर पर मिल जाता है, तो आप हजरात इसको याद करने की कोशिश करें, और किसी भी नशिस्त में किसी से भी सुना जा सकता है, किसी भी नशिस्त में किसी से भी सुना जा सकता है, इसलिए तैयार रहें। ये ऐसा इम्तिहान है जिसका पेपर पहले आउट हो गया, समझ गए ना? हाँ, मैंने अचानक नहीं कहा, तो ये पेपर आउट हो जाए तो बड़े खुश होते स्टूडेंट कि पहले से तैयारी हो जाएगी। अब अगर इस पेपर आउट होने के बाद भी किसी स्टूडेंट ने याद नहीं किया तो फिर समझ लो वो फेल हो जाएगा, सही बात है ना? तो फेल होना चाहते हो या पास होना चाहते हो? तो अगर पास होना चाहते हो तो पास रहो, तब पास होगे, वरना ऐसा नहीं कि बाईपास हो जाए। इसलिए तो हम ऐसी चीजें बता रहे हैं कि जो बड़ी फजीलत वाली है, यानी पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन उसकी बड़ी फजीलत। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खास निगाह करम दुरूद ताज पढ़ने वाले पर, उसमें शेख अबुल हसन अली शाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का दुरूद है ये, जो साहिब इज़्ज़ुल बहर जिनकी दुआ इज़्ज़ुल बहर, तो इसलिए इसकी बड़ी फजीलत है। तमाम हजरात इसको याद करने की कोशिश करें, और याद करने में कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं, बहुत आसान दुरूद है और बड़े प्यारे अल्फाज हैं। जब आप अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठकर पढ़ेंगे तो आप पर खुद कैफियत तारी होगी। सरकार के हुस्न जमाल का जिक्र है, जाहो जलाल का जिक्र है, फजल व कमाल का जिक्र है, जूद व नवाल का जिक्र है, उनके इस्म मुबारक का जिक्र है, उनके जिस्म मुबारक का जिक्र है, हर चीज का जिक्र उसके अंदर मौजूद है। गोया हुजूर का पूरा सरापा जो है दुरूद ताज में मौजूद। अगर कोई पूछे तो वो पढ़कर बता दो। जिस्मुहु मुकद्दस मुअत्तर मुतहर मुनव्वर फिल बैत वल हरम शमसिद दुहा बद्रिद दुजा सदरुल्ला नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाही जुलम जमील शियम शफील उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बराक मरकबुहु वल मेराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु वकाब सुद मौजूदहु। फिर यही नहीं, सैयद अल मुरसलीन खातम अल नबीयीन शफी अल मुज़नबीन अनीस अल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन महबूब रब्बुल आलमीन शफी अल मुज़नबीन अनीस अल गरीबीन महबूब रब्बुल आलमीन सैयद अल सक़लैन नबी अल हरमैन इमाम अल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद अल हसन वल हुसैन। वहां तक बात पहुंचा दी। कितनी मोहब्बत के साथ बयान किया, कितने अकीदत के साथ बयान किया, एक एक लफ्ज बयान कर दिया। और ये बयान खुद नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद जहन में डाल देते। अब करो मेरे महबूब की तारीफ, अब उनके उसने जमाल का जिक्र करो, उनके जाहो जलाल का जिक्र करो, उनके फजलो कमाल का जिक्र करो, उनके जूदो नवाल का जिक्र करो। तो ये ऐसी अजीम व शान चीज है और अजीम व शान दुरूद है कि जो भी इसको पढ़ेगा इंशाअल्लाह उस पर रहमतें नाजिल होंगी। और एक फजीलत यह है कि उसका बुलावा भी आ जाएगा। इसलिए आप हजरात जितने भी हैं सब इसको याद करने की कोशिश करें। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको याद करानी है, लेकिन एक एक करके याद करानी। तो अभी सिर्फ ये दुरूद आप सब याद करें, किसी भी नशीस में किसी से भी पूछा जा सकता है, और जिससे पूछा जाएगा उसको पूरा सुनाना होगा, ठीक है ना। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको याद कराएंगे तब याद होगा। तो आज की इस नशिस्त का जो हासिल है वो ये है कि हम जिक्र करें और जिक्र की फिक्र करें और जिक्र खफी शुरू कर दें। जिक्र खफी शुरू करें, इसकी सबको इजाजत है। जो अपने घरों में जिक्र बिलजहर कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कर लें, और जो नहीं कर सकते वो जिक्र खफी करें, वो हर जगह हो सकता है। यहाँ भी हो, घर में भी हो, बाजार में हो, सफर में, हजर में, हर जगह आप जिक्र करते रहते हैं, कर सकते हैं। ये जिक्र आपको बलाओं से भी बचाएगा, मुसीबतों से भी बचाएगा, परेशानियों से भी बचाएगा, और रब की बारगाह में कुर्ब भी अता फरमाएगा। इसलिए तो इस चीज को अपने पेशे नजर रखें। बाकी चीजें इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में बयान करेंगे। आइए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सगीर व कबीर गुनाहों को माफ़, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो कुछ बयान किया इसको अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, इसमें किसी किस्म की गलती हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तोफ़ील से माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्ज़े से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामा से तेरा जिक्र करने के लिए, जिक्र सुनने के लिए इस नशिस्त में हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा, इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा, इन सब की जागरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।